نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ ابراہیم آیت 35 سے 52 تک انشاءاللہ تعالی اس سورۃ کو مکمل کریں گے. پچھلے سبق میں آپ نے غور و فکر کیا, کچھ آپ نے دیکھا, شکر گزاری کے بارے میں سوچا, نعمتوں کو گنا اللہ تعالیٰ کی. یہ آیت ذہن میں رہی آپ کے, کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ہم سبق پڑھتے ہیں جمعے کے دن, ایک پورا ہفتہ ہوتا ہے ہمارے لیے تدبر کرنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے. تو انہیں آیتوں کو بار بار پڑھا کریں, انہیں کہ صرف سبق سنانے کی حد تک ایک گروپ ہونا ہے تو ہم جلدی جلدی اس کو یاد کر کے اور سنا دیا اور بات ختم ہو گئی. بہت اچھا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنے دن میں, آپ اس سبق کو ایبزارب کریں, جذب کریں. اسے ٹائم لگتا ہے اس چیز کو جذب ہونے میں. جب آپ نے ایک دفعہ جمعے کو پڑھا, اب آپ ہر دن بار بار اس کو پڑھیں گے, بار بار وہ تفسیر آپ کے ذہن میں آئے گی اور آپ کو تدبر کرنے کا موقع ملے گا. ورنہ آپ نے کلاس کے بعد بند کر دی کتاب اور اس کے بعد گروپ کے دن کھولی تو بات نہیں بنے گی, ذہن میں بیٹھے گی نہیں چیز. تو یہاں پہ ہم نے شکر گزاری کا دیکھا تھا کہ شکر گزاری ایک ایٹیچیوڈ ہے, صرف ایک الحمدللہ کہنا نہیں ہے, ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کو دیکھے بھی, ان کو احساس بھی کرے, ان کو گنے. یہ آپ کو پازیٹیو ایٹیچیوڈ دے گی, اس لیے کہ جب انسان ہر وقت نعمتوں کو گنتا ہی رہے گا, دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے آپ نعمتیں گن رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان تعود نعمت اللہ لا تحصوها, تم تو اگر نعمتوں کو گنتے رہو ایک کو بھی. تو گنتے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کا ادراک کرنا چاہو نا, اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہو, اس کے اندر ایک ایک چیز کو دیکھنا چاہو, تو تم تو ایک نعمت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. کسی نے بہت اچھا آنکھ کا بہت خوبصورت ویڈیو بھیجا تھا, کس طرح آنکھ کے صرف ایک سیل کے اندر تک اگر آپ نے صرف ایک بلڈ سیل کے اندر تک چلے جائیں تو اس میں پوری کائنات ہے چھپی ہوئی, ایک ایٹم کے اندر چلے جائیں تو اس میں بھی ایک پوری دنیا ہے. تو ایک ایٹم تک, ابھی تو انہوں نے بےچاروں نے ایٹم ہی ڈسکور کیا کہ وہ اسمالسٹ پارٹیکل ہے, اس کے اندر بھی الیکٹران پروٹون نیوٹرون کیا کیا چیزیں, اس کے اندر بھی اتنے ڈیپتھ میں آپ چلے جائیں تو آپ کہاں تک جا کے بات بنتی ہے. ہر چیز کے ایٹم دیکھیں اور اس کے اندر سے یہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور احاطہ کریں تو انسان نہیں کر سکتا, ساری زندگی بھی گزر جائے گی آپ گنتے رہے, نہیں گن سکتے, نہیں شمار کر سکتے, نہیں احاطہ کر سکتے. تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ جو انسان ساری زندگی نعمتوں کو گنتا رہے, آپ مجھے بتائیں اس کے پاس کہاں یہ وقت ہوگا کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے جو وہ جن پہ وہ گلے کرتا ہے, جن پہ وہ شکوے کرتا ہے, جن کے اوپر وہ ناشکریہ کرتا ہے, جن کے اوپر وہ شکایتیں کرتا ہے. شکایتوں کا تو وقت ہی نہیں ملے گا, اس لیے کہ پہلے تو وہ ان چیزوں کا تو شکر ادا کر لیں جو اس کے پاس ہیں, جو نہیں ہیں ان کا گلا کرنا تو بات کی بات ہے. ساری زندگی انسان کی پوزیٹیو ہی رہے گا, شکر ہے یہ ملا, شکر ہے یہ ملا, شکر ہے. آپ تو صرف ایک ہول سم چیز کو دیکھتے ہیں نا, پوری کی پوری چیز کو ایک آبجیکٹ, شکر ہے میرے پاس یہ میز ہے. اب میز کے اندر جا کے دیکھو تو کتنا کچھ ہے. تو آپ تو ایک چیز کو دیکھیں, اس کی ڈیپتھ میں اگر جائیں تو ہمارے یہ سارے رونے جو ہم روتے ہیں وہ ختم ہو جائیں. پھر کس کو فرصت ہوگی کہ وہ ان چیزوں کے گلے شکوے اور رونے روئے. اور انسان ظلوم ہے اور کفار ہے, یہ نہیں ہم نے بننا, ٹھیک ہے. اور ظلوم کے اندر میں نے آپ کو شرک کا بتایا تھا, ظلوم میں یہ بھی ہے اللہ کی نافرمانی, یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, کوئی شرک تو نہیں کیا تھا, ایک نافرمانی ہوئی تھی. تو ظلم نافرمانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں پھر بھی تم نافرمان ہو اور ناشکر ہو. जिन नेमतों को तुम गिन भी नहीं सकते, इतनी पाके भी तुम नाफरमानी करते। तुम्हें तो सर सदे से ही उठाना चाहिए था कभी, उसके बावजूद तुम नाशुक्र हो। और हर वक्त हम हमारी नजर में कौन सी चीजें ज्यादा होती है हाईलाइटेड ऑल द टाइम, जो हमारे पास नहीं है, या जो बुरा हमारे साथ हो गया, या जो तकलीफ हमें पहुंच गई, या जो कोई मसला हमारा है, वो ऑल द टाइम हमारी नजरों में होता है। और जो चीजें हमें मिली ही है वो हमारी नजरों से ओझल रहती है। और यही शैतान कराना चाहता है कि इंसान नाशुक्र हो जाए। उसने अल्लाह ताला से कहा था, अल्लाह तेरी बहुत कम लोग ये तेरा शुक्र अदा करेंगे, बड़े एहसान फरामोश हैं ये लोग, जिन्हें तूने आदम बनाया ना, इसने तेरा शुक्र नहीं अदा करना, और वो हमने करके दिखा दिया। क्या हमारे रोने ज्यादा है और नेमतों की शुक्रगुजारी कम है? एक दुआ कबूल नहीं होती तो हम उसका इतना गिला करते हैं और इतना रोते हैं, मैंने तो इतनी दुआएं की थी वो नहीं कबूल हुई, और जो इतनी कबूल हुई और जो इससे ज्यादा है जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें दिया हुआ, उनका कोई एहसास ही नहीं। उनकी भी तो खबर लो, कभी उनके भी तुम शुक्र अदा करो। और उनके शुक्र अदा करने तुम बैठ गए ना, तो ये याद भी नहीं रहेगा कि कौन सी एक चीज थी जो तुम्हें नहीं मिली थी। और फिर आप आयत नंबर 28 देखे जरा दोबारा इसको, कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलम तरा इल्लज़ीन बदलू निअमतल्लाहि कुफ्रन, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर के साथ बदल दिया? यानी नेमत मिलने के ऊपर एटीट्यूड क्या होना चाहिए था? शुक्रगुजारी का। लेकिन उन्होंने क्या किया नेमत मिलने पे? कुफर किया। कभी आपने सोचा कि आपको क्या नेमत एक बहुत बड़ी मिली थी? वो ये है जो हक का रास्ता, हिदायत का रास्ता, ये दीन अल्लाह ने आपको इसका रास्ता दिखा दिया, ये दीन आपको दिया, ये समझ आपको दी, ये कुरान का रास्ता आपको दिखाया। उनको वहां पे नेमत क्या थी? जाहिर है उनके लिए भी नेमत जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है कि रसूल तुम्हारे पास आए, या ये दीन तुम्हारे पास आ गया, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई है, और तुम इसकी नाशुक्री कर रहे हो, उसको ना मान के। आज हमारे पास ये दीन आया, क्या हम ये नाशुक्री नहीं कर रहे कि हम इसको अपनाना नहीं चाहते अपनी जिंदगियों में, इसकी तरफ दावत नहीं देना चाहते किसी को भी, इससे शर्माए शर्माए रहते? तो बजाय इसके कि हम इस नेमत का शुक्र अदा करें, जो एक हक इस दुनिया में, जो सिर्फ एक दीन है इस वक्त इस दुनिया में जो हक का कलमा, बाकी सब में कोई ना कोई मिलावट, कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई शिर्क या आमेजिश ये आ चुके, जो अल्लाह की तरफ से भी अधियान आए थे अब वो भी अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है मौजूद, सिर्फ एक ये हक वाला कलमा है जो बाकी रह गया। लेकिन हम इस नेमत की कोई कदर नहीं करते कि हमारे पास हक है और बाकियों के पास नहीं है। तो हमने भी क्या किया, नेमत का बदल क्या किया? कुफर करके, नाशुक्री करके। मुशरिकी ने मक्का ने जुबान से रिजेक्ट किया, हमने अमल से रिजेक्ट कर दिया कि हम इस नेमत को नेमत ही नहीं समझते। अभी ये समझा कि ये दीन हमारे पास नेमत है, कभी इसको नेमत समझा कि अल्लाह ने आपको कुरान की नेमत दे दी है कि जितना आज आपको 13 पारे समझ में आने शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आज 13वां पारा मुकम्मल हो गया, अभी इस नेमत को सोचा? तो ये नेमते हैं, नेमतों की शुक्र गुजारी नहीं करेंगे तो नेमते बाकी नहीं रहती थी। हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, हमेशा आजी, हमेशा शुक्र गुजारी, एहसान मंदी, इस चीज का इतराफ दिल में रहना चाहिए कि अल्लाह तुमने ये नेमत दी है। अब एक ऐसे शख्स का जिक्र है आज कि जो अल्लाह ताला के बड़े शुक्र गुजार थे, बड़े शुक्र गुजार थे, हर इम्तिहान में से गुजरे मगर शुक्र गुजारी का रवैया रखा उन्होंने हमेशा, और वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, अल्लाह के प्यारे। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि जो इंसान है वो जलूम और कफार है, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो इससे बिल्कुल उलट पर्सनैलिटी का मालिक है, और वो कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इज़ क़ाल इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बि जाल, ए मेरे रब बना दे, हादल बलदा, इस शहर को, आमीना, अमन वाला, किस शहर को अमन वाला बनाने की बात कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम? मक्का शहर को। मक्का शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा, और उस वक्त इस शहर में, शहर तो कहला ही नहीं सकता, वो तो मसलन समझने के एक वीराना था, इस वीराने के अंदर कुछ भी नहीं था, कहा जाता है कि पहली दुआ वो है जो सूरह बकरा में हमने पढ़ी थी, वहां पे आप पढ़ चुके हैं, जहाँ पे पहला पारा खत्म हो रहा है वहां पे आप देखिएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ इस शहर के लिए भी। और अब दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं, शहर आबाद हो चुका, अब आके क्या फरमा रहे हैं, शहर की आबाद होना एक काफी नहीं होता, असल चीज होती है वहां का अमनो अमान। ठीक है, जब मक्का शहर बन चुका है तो अब इनको फिक्र हो रही है कि अल्लाह यहाँ पे अमन अता फरमाए। वइज़ क़ाला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम ने, ए मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। क्यों, सबसे पहले अमन की क्यों बात की उन्होंने, इसलिए कि अमन इंसानों की जरूरत है, किसी भी जगह रहने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है ना, वो होता है अमनो आमान। जिस जगह अमनो आमान नहीं है ना, वहां पे जिंदगी अजीरों हो जाती है, लोग वहां से माइग्रेट करने लगते हैं। आप क्या सोचते हैं, हमारे मुल्क में आप देखते हैं ना कि जब अमनो आमान का मसला होने लगा, लोगों को अपने ये फिक्र है कि भाई जान माल इज्जत महफूज नहीं है, तो लोग वहां से छोड़ छोड़ के उन शहरों से दूसरी जगह जाने लगे। तो पीस सबसे पहली चीज है जो चाहिए, क्योंकि अमन होगा तो बाकी नियमतों से भी फायदा उठा सकते हैं। मसलन किसी का काम कारोबार है, कि खाना पीना है, रहना सहना, जब तक अमन ही नहीं है वो कैसे उनको चैन मिलेगा वहां से। तो अमन पहली चीज है जो जरूरत है। और आज देखिए हम लोग भी निकले अपने मुल्कों से, या और लोग भी निकले, अक्सर लोगों को यही मसला है कि अमनो अमान नहीं है हमारे मुल्क में, वहां पे जान और माल इज्जत महफूज नहीं है हमारे, इसलिए हम निकले। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह ताला ने इस शहर को अमन अता फरमाया। बल्कि फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जिस रोज जमीन आसमान को बनाया उसी रोज इस शहर को हुरमत वाला करार दे दिया। तो कयामत तक अल्लाह ताला की अता की हुई हुरमत की वजह से ये शहर बाहुरमत रहेगा। यानी वहां पे कैसे हुरमत वाला है वो, कि वहां पे ना कोई लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, ना कोई दरख्त वगैरह काट सकते हैं, ना वहां पे कोई शिकार कर सकते हैं, ना वहां पे कोई किसी की गिरी हुई पड़ी हुई चीज को उठा सकते हैं, ना वहां पे कोई कत्लो गारत हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यानी जान भी इज्जत माल महफूज, हत्ता के जानवर तक महफूज है, हत्ता के पौधे महफूज है, यानी इतनी हद तक है, इतनी अमन वाला है ये जगह। और ये है सिंबल इस बात का कि उम्मत मुस्लिमा अमन कायम करने वाली उम्मत है। देखो जो इनका मेन सेंटर है कैसे अमन वाला, लेकिन अफसोस है कि आज उम्मत मुस्लिमा के साथ क्या नाम लग गया, दहशत फैलाने वाले, अमन वाले नहीं। इनका नाम ही मोमिन है, मोमिन भी अमन से निकला। तो यानी अल्लाह ताला ने इसको अमन वाला करार दे दिया, बल्कि जिस लिबास में आप इस जगह पे एंटर होते हैं वो लिबास कितना अमन वाला, एहराम पहन के आप एहराम की हालत में तो एक चीज को भी नुकसान नहीं दे सकते, एक चीज को भी काट नहीं सकते, शिकार तक नहीं कर सकते। तो अमन अल्लाह ताला ने ऐसा दे दिया वहां पे कि जमाना है जाहिलियत में भी काफिर लोग भी अपने किसी बाप के दुश्मन, बाप के कातिल को भी देखते थे इस जगह पे, तो उसको कुछ नहीं कहते थे कि नहीं ये अमन वाली जगह। तो ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। वह जिनो बनी, और बचा ले मुझको, वह बनी या और मेरी औलाद को, अन्नाबुद अल अस्माम, के हम भूतों की पूजा करें, हम उनकी इबादत करें। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतना इस बात की फिक्र और कितनी इस बात का डर था, कहीं अल्लाह मेरी औलाद इस चीज में ना पड़ जाए। क्यों इस तरह का क्यों उनको डर था, इसलिए कि उन्होंने देखा हुआ था अपना, देखिए एक चीज से कोई गुजरा होता ना तो उसको फिर उस चीज का खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस कौम में रहे थे तो इनके तो घर में बुत बनते थे और बेचे जाते थे, बाप बुतों का कारीगर था और बुत बनाने वाला और बेचने वाला था। तो आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर में यह माहौल देखा था, अपनी कौम में यह माहौल देखा था, तो अब उनको इतना वो चीज का है कि या अल्लाह बचा लेना हमें, मुझको भी और मेरी औलाद को भी बुतों की इबादत से, क्योंकि दुनिया में उस वक्त ना हर तरफ शिर्क ही शिर्क था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब यहाँ पे लाके बसा रहे हैं, अल्लाह मैंने ऐसी जगह पे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा है, अल्लाह तू इनको बचा के रखना। ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اولاد کو شرک سے بچا کے رکھنا، مجھے شرک سے بچا کے رکھنا۔ اور یہ ہر ماں باپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہر طرح سے شرک کی چیزوں سے، شرک کی جگہوں سے، شرک جس چیز کے اندر جہاں پہ تھوڑا شک بھی ہو کہ یہاں پہ شرک میں پڑ سکتے ہیں، ان چیزوں سے دور رکھیں۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، فوراً امن کی بات کر کے اس کے بعد فوراً یہ دعا کی، ربی اے میرے رب، ان بتوں نے، اضللنا کثیرا من الناس، انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو۔ اللہ، بہت سارے لوگ یعنی بت پرستی میں پڑ گئے، بتوں میں اتنے کھو گئے ہیں کہ اللہ کو ہی بھول گئے، اس خالق کی پہچان سے رک گئے۔ تو اس زمانے میں لوگ اتنے خوبصورت خوبصورت بت بنا کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا سونے چاندی کے بت بنا کے ان کو اتنا فینسی کر کے پھر بس ان کے آگے بیٹھ جاتے تھے، تو ان کو یہ خوبصورت لگتے تھے، ایک تو سامنے نظر آتے تھے، تو بس انہیں کی سجاوٹ، انہیں کو سنوارنا اور انہیں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب ان کو تو رب بھول ہی گیا تھا، انہوں نے لوگوں کو بلا دیا ہے رب کی یاد اور ان کو گمراہ کر دیا۔ اصل میں یہاں پہ ویسے بت کی بات ہے، آج کے بت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ پتھر نہیں ہے، مگر آج کا بت ہے، بت کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اگر بت کو صرف اتنا سا سمجھ لیں کہ وہ پتھر سے تراش کے رکھا ہوا وہ بت ہے، اصل میں کوئی بھی چیز جو انسان کو اپنے اندر اتنا انوالو کر لے کہ اس کو خدا بھول جائے، وہی اس کا بت ہے۔ چاہے وہ اس کی اولاد ہے، چاہے اس کا مال و دولت ہے، چاہے اس کا کام کاروبار ہے، جاب ہے، چاہے کوئی بھی پیشن جو بن چکا ہے اس کا، کہ اس کو نہ نماز یاد، نہ روزہ یاد، نہ حج کا فریضہ یاد، نہ اللہ کے حقوق یاد، نہ اللہ کی اطاعت یاد، نہ اللہ کا ذکر یاد، بس دن اور رات اس کا اوڑھنا بچھونا وہی چیز ہے، وہ اس کا بت ہی تو ہے۔ تو اے میرے رب، انہوں نے تو بہت ساروں کو گمراہ کر دیا، ان بتوں نے، ان کے پیچھے لگ کے لوگ پاگل ہو گئے، اللہ ہمیں اس سے بچا لینا۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو کوئی پیروی کرے میری، میری پیروی کا مطلب کیا، یعنی جو میرے طریقے پر چلے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کہ شرک سے بری اس ذمہ تھے، حنیف مسلم وما کان من المشرکین، یہی تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے کہ وہ حنیف تھے، فرما بردار تھے، اللہ کے یکسو تھے اور شرک سے کوسوں دور تھے، شرک نہیں تھا ان میں۔ تو جو شرک سے دور ہو، جو میرے طریقے پر چلے، فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے کا مطلب کیا، یعنی وہ میرے دین پہ ہے، وہ میرے طریقے پہ ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا پیروکار ہے، وہ میرا فالوور ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو میری اولاد ہے وہ میری ہے، جو میرے طریقے پر چلے، چاہے وہ میری اولاد ہو یا باہر والے۔ اس کا مطلب ہے کہ خون کے رشتہ بھی بعد میں ہے، خون کے رشتے کو کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، میرے جو بچے ہیں بس وہ میرے ہیں، باقی میں نہیں کسی بات کرتا۔ فرمایا جو کوئی میرے طریقے پہ چلے گا وہی بس میرا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا، اے نوح، یہ تیرا نہیں ہے، یہ بیٹا تیرا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے دین پہ نہیں۔ تو جو میرے طریقے پہ ہوگا وہی مجھ سے، ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرے میری، یعنی جس نے شرک کیا، جو میرے سے اپوزٹ چلا، پھر کیا آگے کہنا چاہیے تھا، اللہ اس کو تو خوب سزا دینا، اس کو تو جہنم میں ڈالنا ایسے مشرکوں کو۔ لیکن پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، کہ وہ نرم دل، بہت زیادہ اللہ کے آگے رونے والے، آدمی کرنے والے تھے، واقعی ان کے حلم کا پتہ چلتا ہے اور ان کے نرم دلی کا پتہ چلتا ہے، کہ یہ نہیں فرمایا کہ جو میری نافرمانی کرے اللہ وہ خوب اس کو عذاب دینا، خوب پوچھنا اس کو، نہیں، عذاب کی بات ہی نہیں تھی۔ فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تو غفور الرحیم، तू चाहे तो माफ कर दे, यानी ये नहीं कहा अल्लाह तू उनको माफ कर देना, जो शिर्क करें उनको भी तू माफ कर देना, ये तो फिर गलत बात हो जानी थी। फरमाया तू गफूर रहीम है, यानी तू चाहे तो अल्लाह तू उनको भी हिदायत दे, उनको भी अपने रास्ते की तरफ ले आए, तू जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे सजा दे। तो इससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पता चलता है, अब हम अपने आप को भी देखें कि जब हम ऐसे किसी को देखते हैं तो हमारे मुंह से फौरन क्या निकलता है, अल्लाह बस इसको तो ऐसा कर देना, और इसको तो जब सजा मिले तभी पता चले जहन्नुम में जलेंगे तो फिर इसको पता चले। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अखलाक और किरदार देखें, वरना कोई बात ना माने तो इंसान 4-6 दफा के बाद कहता है बस इनाफ इज इनाफ और बद्दुआ देने लगता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ऐसे थे कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे भी अजाब का जब पता चला तो फरिश्तों से बहस करने लगे, हमने पढ़ा था ना ये, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम बस इस बात को छोड़ दो। हलीम थे, अवाह थे, दूसरों का दुख और तकलीफ उनसे नहीं बर्दाश्त होता था। और ये भी नहीं फरमाया फमन आसानी फलई तमिन्नी, जो मेरी नाफरमानी करे तो वो मुझसे नहीं है। अल्लाह बस तू गफूर रहीम, बात यही तक करती। ये ऐसे ही है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था इन तो अज़िब हुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह अगर तू अज़ाब दे तो तेरे बंदे अगर माफ कर दे तो तू ग़ालिब और दाना, अल्लाह मैं क्या कर सकता हूँ, तो अज़ाब भी देगा तो तेरे बंदे हैं, तू जो मर्जी चाहे करे, मैं तो इसके अंदर कोई पावर नहीं रखता, ना तेरे बंदे। जैसे कोई कहे भाई आपके बच्चे आप इनको मारे रखे हैं इनको, मैं क्या कह सकती हूँ, ऐसे भी तो नहीं है, आपके बच्चे हैं अब जैसे मर्जी चाहे। लेकिन अगर माफ कर देगा वालिद है, दाना है। और सही मुस्लिम में यह हदीस आती है इसी इसी आयत के उसके अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा रात को खड़े हुए तहज्जुद में खड़े हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी दुआ को बार बार मांग रहे हैं, बार बार रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरा मिनन्नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूर रहीम, ये कह रहे हैं। फिर फरमा रहे हैं इसके बाद जो ईसा अलैहिस्सलाम की बात इन तो अज़िबहुम फइन्नहु मिबाद व इन तगफिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब ख्याल आया होगा ना कि अल्लाह तू अज़ाब दे दो तेरे बंदे हैं, हम दिल के अंदर देखें इतनी उम्मत से शफकत है, इतनी उम्मत से शफकत है कि अब ये कहा नहीं जा रहा कि अगर अल्लाह तू अजाब दे तो तेरे बंदे, हालांकि अल्लाह का हक है, चाहे तो अपने बंदों को अजाब दे, चाहे तो उनको हलाक करे, चाहे तो उनको जहन्नुम में फेंके, अल्लाह के बंदे जैसे मर्जी चाहे, अब ये बोला नहीं जा रहा। तो ये कह के फरमाते हैं दोनों हाथ उठा के अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, रो रो के अपनी उम्मत को याद कर रहे, अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत के। ये नहीं कहा जा रहा कि अल्लाह तू चाहे अजाब देना, अल्लाह मेरी उम्मत, यानी आगे बोल भी नहीं पा रहे, रो रही इतना ज्यादा अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाओ जाके मेरे रसूल से पूछो क्यों रो रहे। मैं आके पूछा, हालांकि अल्लाह ताला तो जानता है हमें बताने के लिए कि हमें याद रहे कि हमारा नबी हमारे लिए कितना रोया। तो जब पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया अपनी उम्मत के लिए रोता हूँ, अल्लाह तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया जाओ जाके खुशखबरी दे दो कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे। नहीं, एक एक उम्मती का इतना दर्द है कि मेरी उम्मती का क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा उनका, मैं कैसे कहूँ अल्लाह जो तेरी नाफरमानी भी करे तो बस ठीक है, तू गफूर रहीम है, जो चाहे तू करे बस ठीक है। नहीं अल्लाह, मेरी उम्मत जैसे इंसान कोई माँ तड़पती है ना, है मेरा बच्चा, कि मैं कैसे दिखूंगी कि मेरा बच्चा आग में जा रहा है, मेरा बच्चा, ऐसे तड़प रहे हैं। इसी बात के ऊपर सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ होती है कि जिस उम्मत के लिए मेरे नबी इतना तड़पे हैं, इतना रोए हैं और ऐसे दुआएं मांगी हैं, आगे कुछ मुंह से निकल नहीं रहा, अल्लाहुम्मा उम्मती, आज वो उम्मत किधर गिरी पड़ी है, किस दवार का शिकार है कि भूल ही गई है कि उठना कैसे, एहसास ज़िया भी नहीं रहा, भूल गई है कि हम कौन है, क्या है और किधर हमें जाना, आज क्या हाल हो रहा है। वन आसानी फइन्नक गफूर रहीम, अल्लाह जो मेरी नाफरमानी करे तो मैं फिर क्या, तू बस गफूर रहीम है। इतनी जरूरत नहीं थी कहीं कि अल्लाह फिर तू उनको ये कर तो वो कर, नहीं तू गफूर रहीम, यानी शिर्क वाले तो ऐलाने बरात कर दी कि मेरा नहीं उनसे कोई ताल्लुक, अल्लाह फिर जो तेरा फैसला होगा, जो तू चाहे, जो जिसके जिसका उनको मुस्तहिक पाए, तो तू गफूर रहे, मैं तुझसे किसी ज्यादती का अंदेशा तो नहीं, ना तू कोई ना इंसाफी करेगा। रब्बाना ए हमारे रब, इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, ए हमारे रब बेशक मैंने तो बसा दिया अपनी औलाद में से, यानी पूरी औलाद को नहीं, मिन ज़ुर्रियती औलाद में से, यानी औलाद में से कुछ को, बाघ को और इस्माइल अलैहि सलाम को बसाया था ना, फी वादिन गैरी ज़ी ज़रईन, एक ऐसी वादी में जिसमें कोई ज़रात नहीं, कोई खेती नहीं, ऐसी वादी में, इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर के पास, हुरमत वाले घर के पास। अब आप देखें क्या फरमा रहे हैं, ऐ मेरे रब मैंने तो अपनी एक बच्चा है जो बुढ़ापे में मिला हुआ, दूध पीता है, इतना छोटा है, वैसे ही माँ बाप को बड़ा प्यारा होता है, अगर अल्लाह तेरे हुक्म पे मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, ऐसी जगह पे जहाँ ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना कोई चीज उगती है, ना कोई बंदा बशर दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, ऐसी जगह पे बसा दिया लाके, और कौन ऐसी जगह पे अपने खानदान को अकेला छोड़ के जा सकता है जो अल्लाह पर अंधा एतमाद करता हो, उसको ब्लाइंड ट्रस्ट हो, उसको इतना भरोसा हो कि वाकई जो रब है वो हिफाजत करने वाला, जो रब है वो रिज्क देने वाला, जो रब है वो ही इनकी इनकी सारे जरूरियात को पूरा करने वाला, जिसको पूरा मुकम्मल भरोसा हो अपने रब पे, वही ये काम कर सकता है, वरना इंसान को 1000 थॉट्स आएंगे जहन में कि हाय खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, एक थैला खजूर का और एक मशकीदा पानी का लेकर, और वो बीबी हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया है और खुद वहां से रवाना हो रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 99 ईयर्स की एज में अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए थे और इतने से दूध पीते बेबी को, अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या होगी, चलो 99 साल हो गई होगी या 99 साल होगी, यानी इस दूध पीते बेबी को किस जगह लेकर आए हैं जहाँ अल्लाह तेरा घर है, जहाँ पे कोई चीज नहीं, और कितना को दे सकते हैं, खजूर का थैला दे दिया, पानी का मशकीदा दे दिया, उनके पास रखा और खुद चल पड़े। बीबी हाजरा पीछे दौड़ी है, इब्राहिम आप हमें इस उजाड़ जगह पे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, ना यहाँ पे कोई हमसाया है, ना यहाँ पे कोई साथी है, ना यहाँ पे कोई जरूरत का इंतजाम है, आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जरा सोचे ना, यहाँ पे आज भी नहीं ना कोई चीज उगती है, आज वहां पे ना कोई फल ना कोई फ्रूट, वहां की अपनी तो कोई भी नहीं है प्रोड्यूस, वहां पे ऐसी दिया बांध के जाते हैं, हमें किधर छोड़ के जा रहे हैं। आज इंसान अपनी औलाद के लिए कौन सी जगह को पसंद करता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा उनके लिए आसाइशें हो, जहाँ पे उनकी जरूरियात का इंतजाम हो, कौन भी आम जगह पे छोड़ के जाता है। अब वो कह रही है कि आप किधर हमें छोड़ के जा रहे हैं, और 2-3 दफा कहती हूँ, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तब कहती हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया, اور ابراہیم علیہ السلام سر ہلا دیتے ہیں کہ ہاں، فرماتی ہیں اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب ماں کا، اس عورت کا بھی اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہے، اس کو امیجن کر سکتے ہیں کتنا بھروسہ ہوگا کہ اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اتنا یقین ہے. آج کہتے نا ہم کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کیسے تھے، کتنے فرما بردار تھے، کتنے اچھے بچے تھے. تو ظاہر ہے جس کی ماں ہاجرہ ہوگی اور باپ ابراہیم ہوگا، وہ بچہ پھر کیسا ہوگا. آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچے تو ایسے نہیں، تو ہم کون سے بی بی ہاجرہ کی طرح کی مائیں ہیں جو ہم کہیں گے ہمارے بچے ایسے نہیں؟ بچوں سے شکایت ہے، ہم خود کہاں ایسے. تو ظاہر ہے جب ماں ایسی ہوگی تو پھر آگے اولاد بھی ویسی تربیت پائے گی. تو اب وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے آباد فرمایا کہ آج یہ شہر جو ہے، آپ مکہ جب جاتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیا کریں کہ اس شہر کی بنیاد ایک عورت نے رکھی ہوئی، عورت نے بسایا اس شہر کو، اس سے اس کی اس نے بنیاد رکھی تھی. تو اے اللہ، میں نے ایسی جگہ پہ لا کے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے تو تیری حرمت والے گھر کے پاس، یعنی اس جگہ پہ. اب وہاں پہ اس وقت تو نہ بھی تھا اللہ کا گھر، مگر اس کی بنیادیں تو موجود تھی نا، جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک بنیادیں تھی. کس لیے بسایا؟ ربنا، اے ہمارے رب، کس لیے بسایا؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کرے نماز. تیرے گھر کے پاس لا کے بسا دیا تاکہ یہاں پہ وہ نماز، جیسے ہم مثلا کوئی کہے کہ ہم نے گھر نا مسجد کے پاس لیا تاکہ میرے بچے نمازی بن جائے. اور واقعی بچوں کو نمازی بنانے کے لیے ایسا ضروری ہے، گھر بھی انسان وہ دیکھ کے لے جو مسجد کے قریب ہو، مسجد کو پرائیورٹی بنائے. یعنی مسجد کی پرواہ نہیں، کہیں سے کہیں بھی گھر لے لیا، ہم نے کون سا مسجد جانا، چلو 15 منٹ کی بھی ڈرائیو پہ تو کون سا ہم روز مسجد جاتے ہیں. اور آپ یہ سوچ کے لیں گے نا گھر کے، اللہ تاکہ میری اولاد نمازی بنے، مسجد میں جایا کرے، تو اس کا بھی اجر ہے. اور حرم میں تو نماز پڑھنے کا اجر ہی کتنا زیادہ ہے، لاکھ نمازوں کے برابر. تو دیکھیے ان کے شوق کیسے تھا. ہم جیسے کہیں جاتے ہیں، موو ہوتے ہیں، تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ یہاں پہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہم یہ ڈگری لے لیں، ہم یہ. اور ابراہیم علیہ السلام کا شوق کیا تھا کہ اللہ میں نے یہاں پہ تیرے گھر کے پاس، چاہے ویرانہ چاہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا، اس لیے کہ پتا ہے رازق اللہ ہے، جس کی خاطر سب چھوڑ کے یہاں پہ لے کر آیا ہوں اپنی اولاد کو، وہ خود ہی اس کا انتظام کرے گا رزق کا. تو اللہ، لیکن مین پرپز کیا ہے؟ میری اولاد نماز کو قائم کرنے والی بن جائے. حالانکہ اولاد ابھی کیا ہے، اتنی چھوٹی سی بیبی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی سوچ دیکھے کہاں پہ، اولاد کی نماز کی فکر ہے. ہم کتنی دفعہ یہ سوچ کے گھر بدلتے ہیں کہ ہمیں اولاد کی نماز کی فکر ہو کہ وہ نمازی بن جائے. اللہ اکبر، تاکہ وہ نماز قائم کرے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، اور پس تو پس اللہ کر دے ان لوگوں کے دلوں کو مائل ان کی طرف. کن کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف اور اللہ اس میرے گھر والوں کی طرف، دونوں ہی مراد ہیں، میرے اہل بیت کی طرف اور میرے اور بیت اللہ کی طرف، اس جگہ کی طرف بھی، میرے خاندان کی طرف بھی مائل کرنے. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی پھر جرحم قبیلے کو اس طرف بھیج دیا تھا. جرحم قبیلہ آیا اور انہوں نے آصف دیکھا کہ ایک عورت ہے، مغلط انہوں نے دیکھا نا ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اور یہاں پہ سوچا کہ کوئی پانی ہے، لگتا ہے جیسے پرندہ یہاں پہ اڑ رہا ہے. اور واقعی وہاں پہ گئے تو بی ہاجرہ وہاں پہ تھی، اور وہ انہوں نے اس شرط کے اوپر ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی کہ پانی کے اوپر بی ہاجرہ کا ہی قبضہ رہے گا. کبھی میں سوچتی ہوں تو دیکھیں، وہ ایک قبیلہ آیا تھا، بی ہاجرہ اکیلی عورت تھی ایک بیبی کے ساتھ، لیکن ان لوگوں میں پھر بھی کوئی ایتھکس تھے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو مار کے ختم کر کے پھینکو یہاں سے اور پانی پہ ہم قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آج کی تو جاہلیت پرانی جاہلیت سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو کسی اکیلی عورت کو دیکھ لیں گے، کوئی سمجھے گا اس قابل کے یہ اس کی پہلے اس سے اجازت لیں اور پھر اس کے بعد ہم رہے، تو اس کا ہی کام تمام کر کے ختم کر. तो वो जाहिल लोग भी बेहतर थे आज के बहुत पढ़े लिखों और सिविलाइज्ड वर्ल्ड से। तो उन्होंने इजाजत लेकर और वो वहां पे बस गए। तो अल्लाह ने उनको वहां पे देखे एक मायल कर दिया ना लोगों का दिल उस तरफ। और फिर उसके बाद लोगों के दिल ऐसे मायल हुए, लेकिन उनकी दुआ सुभान अल्लाह देखिए एक एक वर्ड में ना हिकमत है। ये नहीं फरमाया अब इधर तन नासी तहवील है, अल्लाह लोगों के सारों के दिलों को इधर मारते। अन्नास अगर कह देते तो रूम पारे सारी दुनिया यहाँ पे कब्जा करने के लिए खड़ी हो जाती। मीन अन्नास लोगों में से लोगों को, यानी बाज लोगों को, यानी ईमान वालों के दिल इस तरफ मायल कर दे, पूरी दुनिया के लोगों के दिल नहीं मायल कर दे। सारे यहाँ पे जगह होती रहती है और सब कब्जा करने की कोशिश करते, फिर तो इस जगह को अगर सबके ही दिल मायल हो जाते। लेकिन मीनन नाज कहा तो अब मुसलमानों के दिल इस तरफ मायल होते हैं। और देखो आज कैसे मायल है कि लोग तहवी आया ना सुभान अल्लाह, लफ्जों की भी इतनी खूबसूरती है, यानी चाहत मोहब्बत और हवा। मैंने आपको बताया ना कि ऐसी जैसे ख्वाहिश नफ्स के लिए भी आता है, जिसमें ऐसी ख्वाहिश ऐसा इंसान किसी चीज के लिए शौक रखे कि जिसमें अपने इंसान सब चीज भूल जाए, अपना घर बार अपना अपने आप को, इंसान इतनी किसी चीज की मोहब्बत में इतना पैशन हो ना अपना आप ही भूल जाए कि मैं कौन। किसको कहते हैं हवा, इतनी यानी मोहब्बत, इतना पैशन। अब आप देखें वाकई आज अल्लाह ने ऐसी ही मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी कि अपने घरों को छोड़ के उस जगह जाते हैं हज और उमरे के लिए, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, अपना स्टेटस अपना ये सब मकाम भूल जाता है कि हम क्या हैं और दो कपड़े पहने हुए और उस लिबास में वहां पे पहुंचे हैं। और फिर देखें अपनी हैसियत या अपनी जो पोजीशन है उसका भी कोई ख्याल नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, गरीब अमीर सब घुले मिले, ना कोई पता है कि कोई फकीर है, ना कोई पता है कि कोई बादशाह है, सब लिबास एक, तराना एक, हाल हुलिया एक, सब छोटे इतने ज्यादा पैशन है तो ऐसा करते हैं। ऐसा अल्लाह ने दिलों में उस जगह की मोहब्बत को डाल दिया। और अगर मैंने जैसा आपको बताया अहले बैत की मोहब्बत उनकी ली जाए ना, कि दोनों की मोहब्बत हो गई है, घर की भी मोहब्बत और अल्लाह ये जो मैंने अपने बीवी बच्चे यहाँ पे छोड़े हैं अल्लाह इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे, तो वाकई उनकी मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाल दी, उन्हीं की औलाद में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मोहब्बत कैसे दिल में डाल दी अल्लाह ताला। और मोहब्बत मांगी इब्राहिम अलैहि सलाम, अपने घर वालों के लिए मोहब्बत मांगी अल्लाह से। और मोहब्बत इंसान की जरूरत है, और मोहब्बत वही पाता है जो मोहब्बत देना जानता है। जो लिया दिया रहता है लोगों से, बस एक डिस्टेंस पे रहता है कि मैं उसमें लोगों से एलर्जिक हूँ, बस उनसे दूर दूर ही रहूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसमें कोई खैर नहीं, जो ना मोहब्बत करता है और ना उसको मोहब्बत मिलती है कहीं से, उसमें कोई खैर नहीं। तो उन्होंने मोहब्बत की भी दुआ की है, वर्जुक हूँ मीना समरात, और अल्लाह इनको रिस्क देना फलों में से। आज देखिए वहां पे कितने 20 लाख 30 लाख कभी हुज्जाज जमा हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने कोई कमी देखी खाने पीने की, ये खाने पीने की चीजें ना मिले। फलों का मतलब क्या, खाने पीने की चीजें, मैंने आपको पहले भी बताया ना प्रोड्यूस। तो उस आज तो चलो ठीक है जहाजों में चीजें आती हैं, वो उस जमाने में भी एक तजारती मरकज बन गया था, सेंटर बन गया था ट्रेडिंग का ये जगह, लोग यहाँ पे लाते थे चीजें बेचते थे, जिस जगह पे खुद कुछ भी नहीं उगता वहां पे भी हर चीज पहुंची होती। जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि पहले उन्होंने दुआ मांगी थी समरात की, और उस वक्त कहा था कि अल्लाह जिस बस जो तेरे पर ईमान लाए बस उनको देना, अल्लाह जो दूसरे यानी उनको नहीं, लेकिन यहाँ पे कहा कि रिस्क दे इनको मेरा समरात फलों में से, यानी खाने पीने की चीजें अल्लाह इनको मुहैया फरमा। क्यों, लअल्लहुम यशकुरून, अल्लाह इसलिए ताकि ये तेरे शुक्र गुजार बने, तेरी शुक्र गुजारी करें, शुक्र अदा करें। अरे ये भी क्यों दे, नेमते इसलिए देना ताकि इनमें शुक्र गुजारी पैदा हो। देखिए हर चीज का मकसद उनके नसीब कितना प्यारा था, या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि ये तेरी शुक्र गुजारी करे। अब शुक्र की बात पहले आई थी ना, हमने पढ़ी है पहले 34 आयत के अंदर शुक्र की बात पढ़ी। अब बताया जा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को भी चाहते थे कि उनमें शुक्र गुजारी हो, और शुक्र से मुराद सिर्फ जुबानी अल्हम्दुलिल्लाह कह देना नहीं है, बल्कि शुक्र जैसे मैंने आपको बताया कि रवैया है, एक एटीट्यूड है, एक एहसास है, नेमत देने वाले की वफादारी, उसकी इताअत गुजारी, ये शुक्र है। रेश है उसका बन के रहना जिसने आपको नेमत दी है, ये शुक्र है उसका। और देखिए यहाँ पे अगर आप पॉइंट्स में देखें, नमाज मांगी, मोहब्बत मांगी दिलों में लोगों की, कि वो मोहब्बत डाल दे, इनकी तरफ लोग खींचे चले आए, और समरात मांगी। अब अगर आप कहें कि ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के लिए दुनिया मांग ली है, क्या ये दीनदारी है कि वो दुनिया मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो दीनदारी के खिलाफ नहीं है ये? नहीं, ये दीनदारी के खिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतों को इंसान पे हराम नहीं किया, दुनिया की नेमतें भी मांगे और आखरत भी मांगे। बात यह है कि दुनिया चूंकि नाफिस है ना, नाफिस है, यहाँ पे हर चीज ही मांगनी पड़ती है, यहाँ पे सेहत भी मांगनी पड़ती है, अल्लाह रिस्क भी दे दे, अल्लाह अमन अमान भी दे दे, अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, आखरत सुभान अल्लाह, क्योंकि आखरत की जो जन्नत है वो मुकम्मल है, तो वहां पे आप सिर्फ अगर ये कह देते हैं ना, बाग लोग कहते हैं ना अगर हम दुनिया ही मांगते रहते हैं, आखरत कम मांगते हैं, आखरत की दुआएं हमारी कम होती हैं और दुनिया की ज्यादा होती हैं, इसका जवाब पता है क्या? इसका जवाब ये है कि हाँ ऐसा होता है, इसलिए कि दुनिया नाफिस है और आखरत मुकम्मल है। दुनिया में ये सब चीजें मांगनी हमारी जरूरत है, आखरत के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये कहते हो या अल्लाह जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर देना, या अल्लाह अपने तमाम अजाबों से बचा के जन्नत में दाखिल कर देना, तो कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं मांगने की जरूरत, इसलिए कि ना अमन मांगने की जरूरत है, ना सेहत मांगने की जरूरत है, ना हिदायत मांगने की जरूरत है, ना नमाज मांगने की जरूरत है, ना फरमा बरदारी अल्लाह की उस पे चलने की मांगने की जरूरत है, ना अपनी औलाद के लिए कुछ मांगने की जरूरत है, वो तो है ही, जिस जो उसमें दाखिल हो गया फिर तो सलामती सलामती, अब क्या मांगना है, बस एंट्री चाहिए उसके अंदर से, उसके बाद सब कुछ मिलते। लेकिन क्योंकि ये दुनिया नाफिस है, ये वो इसमें एक चीज मिलती है तो दूसरी की कमी है, दूसरी मिलती है तो तीसरे की कमी है, तो इसमें तो हर चीज ही मांगनी पड़ेगी, हिदायत भी इसमें मांगो, अमन भी इसमें मांगो, जो खाने पीने की परवानी भी इसमें मांगो, रिस्क भी मांगो, शुक्र गुजारी भी मांगो, उस जन्नत में तो कलमा ही सलाम होगा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होगा, और ये तस्बीहात तो सांस के साथ चल रही होंगी, वहां पे क्या मांगना, ना सेहत मांगने की जरूरत है, बीमारी ही नहीं, ना बुढ़ापे से बचने बच के जवान रहने की दुआ मांगने की जरूरत है कि वहां पे बुढ़ापा ही नहीं, तो वहां पे तो सब कुछ ही है। ये सारी दुआएं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं, ये दुनिया की हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो दुआ सिखाई रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसना, पहले दुनिया मांगी, ये कुरान हमें दुआ सिखाता है, दुनिया पहले मांगोगे यहाँ पे हसना मिलेगी तो आखरत की हसना मिलेगी ना, यहाँ पे अच्छाई मिलेगी और अच्छाई के अंदर फिर क्या है, नेकी की तौफीक, यहाँ पे नेकी की तौफीक मिलेगी तो आखरत अच्छी होगी ना। तो ये ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखो सलाह मांगी, ठीक है, ताकि कायम रहे नमाज के ऊपर, अल्लाह ने इसलिए लाके यहाँ पे बसाया, इनकी तरफ दिल मायल कर दे लोगों के, इसमें कोई बुराई नहीं है मांगने में, और रिस्क मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ शुक्र गुजारी मांगो, और ये ना कहो कि पता नहीं हमसे तो शुक्र होगा अदा के नहीं होगा तो अच्छा ये हमें कुछ ना मिले, हम फिर क्यों मांगे, पता नहीं हमसे शुक्र भी हो सकेगा कि नहीं, नहीं मांगो और शुक्र भी मांगो, अल्लाह शुक्र भी तेरी तौफीक से ही हो सकता है, तो अल्लाह तू शुक्र की नेमत भी अता फरमाना कि मुझे शुक्र गुजारी वाली जुबान अता फरमाना, शुक्र गुजार दिल अता फरमाना। रब्बना ए हमारे रब, इन्नका तालमु, बेशक तू जानता है, मा नुखफी, जो हम छुपाते हैं, वा मा नुअलिन, और जो हम जाहिर करते हैं, ए हमारे रब तू सब कुछ जानता है, यानी अब ये किस वक्त वो फरमा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब वो जा रहे हैं बीबी हाजरा को और अपने बच्चे को छोड़ के और चले जाते हैं, और जब ये लोग नजरों से ओझल हो जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पे खड़े होके इनकी तरफ अब मुंह करके अब ये दुआ कर रहे हैं, और दुआ करके अब दिल का आलम सोचे क्या होगा। जरा आप सोचे, जब हम पहली दफा इस मुल्क में आए और हमने अपने प्यारों को छोड़ा, तो हालांकि किसी ने छोटे बच्चे को नहीं छोड़ा किसी ने, लेकिन चलो माँ बाप को छोड़ा, किसी को छोड़ा, तो दिल का हाल क्या होगा। हालांकि फोन कर करके टेक्स्ट करके हर एक बात का पता दे रहे हैं, वो तो ना कोई फोन है ना कोई टेक्स्ट है ना कोई अता पता, फिर आप पता नहीं कब मिले, और बस इनको अल्लाह के हवाले करके अल्लाह के भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं। और बच्चा भी वो है जितनी प्यारी एज का है, इस वक्त तो माँ बाप उससे खेल के दिल बहलाते, और वो है जो सारी जिंदगी की दुआओं के बाद अब मिला बुढ़ापे में जाके, और ये भी नहीं पता कि दोबारा कब मिलेंगे, इस वक्त दिल की कैफियत क्या होगी। अब देखे उस वक्त अपने दिल का हाल अल्लाह के आगे ही रखते हैं, अल्लाह तू तो जानता है जो दिल में छुपा हुआ वो भी तू जानता है, जो जाहिर कर रहे हैं जो भी वो भी तू जानता है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी जानता है। अल्लाह ये भी एक कठिन मरहला और एक कितना बड़ा इम्तिहान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। वमा यफ़ा अल्लाह, और नहीं छुपी भी अल्लाह पर मिन शय इन कोई चीज भी, फिर अरबी वाला फिर समाना जमीन की और ना आसमान, आलिमुल गैबी व शहादा है। तो कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे दिल का हाल तेरे सामने है, जो मैं जाहिर कर रहा हूँ वो भी तेरे सामने, तुझे पता है कि क्या जाहिर हो रहा है और क्या दिल में, तुझे यानी हमारी कमजोरियां भी पता है, जमीन आसमान का हाल तू जानता है, तो हमारी कमजोरियां हमारी जरूरतें हमारी हाजतें सब तुझे पता है। तो बाज लोग फिर कहते हैं हम मांगने की क्या जरूरत है, जब सारी जरूरियात ही अल्लाह को पता है तो फिर हमने क्यों मांगना। ऐसी बात नहीं है, दुआ तो आपका और अल्लाह के दरमियान एक ताल्लुक है, एक वास्ता है, एक इबादत है, दुआ फिर भी मांगनी है। हालांकि कई चीजें ही हैं जो आपकी दुआओं के बगैर ही अल्लाह ताला ता फरमा देता है, लेकिन अल्लाह को पसंद है कि तुम उससे दुआ करो मांगो उससे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक। अब इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको हो सकता है कि ये बात उस वक्त की जा रही हो जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा वापस आए, क्योंकि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के गए थे पहली दफा उस वक्त तो इसहाक अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, तो हो सकता है ये वाली बात अब उस वक्त की जा रही हो जबकि दोबारा आए। तो ये दुआ सेकंड टाइम की है। अब क्या कह रहे हैं सेकंड टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह किस बात पे शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र है इस बात पे, अल्लाह का शुक्र है, उस रब का शुक्र है जिसने मुझे अता किया इस्माइल और इसहाक बुढ़ापे की उम्र में आके। यानी जब सोचे इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन 100 साल के हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब पैदा हुए, तो इसहाक अलैहिस्सलाम तो बाल जगह पे आता है 112 ईयर के थे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उस वक्त पैदा हुए थे, बाद में आता है 117 ईयर्स के थे जिस वक्त इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी इतना ज्यादा बुढ़ापा था। आज तो हमने कोई 100 ईयर का भी नहीं बंदा देखा, वह अबव 100 ईयर। उस वक्त अल्लाह ने औलाद की नेमत दी, यानी इस बुढ़ापे में आके जब कभी कुछ सोच तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ये इतना यानी इसमें तो इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है कि अब क्या बच्चे होने, कभी कोई भी मायूस ना हो, कुछ देर भी हो जाए तो भी इंसान अल्लाह की रहमत से ना मायूस, तब शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह तूने मुझे ये नेमतें दी हैं इस्माइल और इसहाक, औलाद की नेमत पे शुक्र अदा कर रहे हैं, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। हम औलाद की नेमत पे शुक्रगुजारी करते बहुत दफा तो हम नाशुक्री करते हैं, हाय मुसीबत हाय इनको संभालना पड़ गया, एक मसला आए ऐसे और वैसे जरा सताएं तो क्या क्या कहते हैं, उनके वजूद से ही तंग रहते हैं, बस कहीं चले जाएं इस वक्त, इनको यहाँ तो कोई ले जाए, यहाँ तो कुछ है, हमारी जान छोड़े, किसी ना किसी के घर भेज दो इनको। ऐसा एटीट्यूड रखना, ये तो नाशुक्री की बात है कि मेरे सर से उतरे। सोचें अगर ये औलाद ना होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती। औलाद तो एक नेमत है, बाल लोग तो इस कदर नाशुक्री करते हैं कि कोई प्रेग्नेंट हो जाता है ना, तो मैंने खुद अपने कानों से बातें सुनी, कोई प्रेग्नेंट हो जाता है उसको बाकायदा कहने लगती है बस अब तो तुम्हारी जिंदगी, बस सारा फन तुम्हारा खत्म, अब ना तुम्हें रात की नींद, बस सो जाओ अभी जितना अच्छी तरह सोना, जैसे कि हाय उसके बाद पता नहीं तुम कितनी मुसीबत में पड़ गए, बस गर्म खाना खा लो जितना आप खाना है, फिर तो ठंडे ही खाने पड़ेंगे। ये अल्लाह अल्लाह नेमत दे रहा है तो तुम इस तरह के रवैये करते हो, ये नेमत है, कितना एंजॉय करना है फिर कर लो, फिर उसके बाद क्या, ना तुम कहीं जा सकोगी ना कुछ है, ये फीडर बनाने उसका करना उसका बैग तैयार करो, नहीं बाकायदा लोग बिठा के, इसीलिए लोगों को अब पसंद ही नहीं कि औलाद हो, या औलाद भी हो तो ज्यादा ना हो, बस एक आध हो तो बस इतना ही काफी है। वो इस नेमत के ऊपर शुक्र गुजारी कर रहे हैं और हम दिन और रात ना शुक्रिया करते हैं। हाँ बच्चे सताएंगे भी, बच्चे हैं तो सताएंगे भी, लेकिन सोचिए अगर ना होते तो क्या होता, सताना तो नहीं होना था लेकिन क्या आपकी जिंदगी में कोई फन होता सब ऐसा नहीं। हम भी असल में इस तरफ को निकल गए हैं, हम भी गैर मुस्लिमों को देख के बस जिंदगी का फन ही बना लिए, अब बच्चों में हमारे फन के अंदर क्यों मुदाखलत हो जाए, हम शेयरें कैसे करेंगे, हम कहीं मजे कैसे करेंगे, हमारा इनको अब ले लेके जाना पड़ेगा तो अब आए ये मुसीबत आए ये तो वही है। कहीं ये ना कि अल्लाह ताला को कोई बात ना पसंद आ जाए, अब छुट्टियां होने लगेंगी तो उसके ऊपर मसले के, हाय ये आप घर पे रहेंगे तो हाय हमारा क्या होगा, इन्ना रब्बी लसमिया और दुआ, तो वो कह रहे हैं कि बेशक मेरा रब तो अलबत्ता सुनने वाला है दुआ का, कि उसने मुझे इतने इस बुढ़ापे में आके मुझे ये औलाद दे दी है, वाकई अल्लाह दुआओं का सुनने वाला है, तो उस टाइम पे जिस वक्त इंसान कोई कहे के अब क्या मेरी दुआ सुनी जाएगी, सारी जिंदगी तो दुआ मेरी कबूल नहीं हुई तो अब क्या होगी कबूल, नहीं इंसान सोचता है ना एक चीज मैंने मांगी 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 नहीं पूरी हुई अभी तक तो अब क्या पूरी होगी, हालांकि अल्लाह समीअ और दुआ है, जब चाहे कई चीजें बड़े इंतजार के बाद मिलती है, और फिर आगे वो दुआ है जो अक्सर हम रटी रटाई अपनी नमाजों में पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी दुआ, और ये कितनी प्यारी दुआ, और यही वो दुआ है कि लोग मुझे कहते हैं हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, अब उनको ये दुआ बता दें, जब मैं उनको ये दुआ बताती हूँ तो वो शायद उनको ऐसे लगता है ये कौन सी इन्होंने दुआ बताती, ये तो हम हर वक्त नमाज में पढ़ते ही है, कौन सी ऐसी बड़ी दुआ बताती है, हालांकि इसका तर्जुमा आप देखें रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलाह, और इसे आप इसकी सही तश्कील भी देख सकते हैं, यानी जेर जबर को भी अपनी चेक कर सकते हैं, जो आप को बचपन से याद हुई भी है ये दुआ, वाकई उसकी जेर जबर सेम है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये कुरानी दुआ है ना, एक एक जेर जबर सही होनी चाहिए, तो ए मेरे रब मुझको बना दे कैसा नमाज कायम करने वाला, अल्लाहु अकबर। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में भी इसका मतलब नमाज थी, इसलिए उन्होंने बच्चों की भी नमाज की फिक्र थी, अब फिर अपने लिए भी कह रहे हैं, क्या उन्होंने क्या खुद नहीं नमाज पढ़नी थी, वो तो पैगंबर थे, कभी ऐसा हो सकता है वो नमाज छोड़ते हैं, फिर क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना, इसलिए कि एक तो नंबर वन इंसान का कुछ पता नहीं होता दिल कहाँ का कहाँ कभी चला जाए, हमारे जैसे तो बहुत ही मांगनी चाहिए थी, ये ना सोचे बचपन से पढ़ रहे हो तो बस मैंने कायम ही रहना नमाज पे, अब थोड़ी मैंने कभी छोड़ी है तो आदत ही पड़ गई, नहीं अल्लाह तुम मुझे कायम रखना, क्योंकि तो दिल के ऊपर इंसान का जोर नहीं है, इंसान की हालात के ऊपर, क्या हालत आज है ईमान की और कल क्या हो, नंबर टू क्या बात है के नंबर टू बात ये, अल्लाह अगर मैं नमाज आज पढ़ भी रही हूँ अल्लाह तेरी दीवी तौफीक से पढ़ रही हूँ, कल तूने मुझे तौफीक ना दी तो मैं तो नहीं किसी काबिल। कहना मेरा दिल कायम रखना, मुझे करवा लेना, और देखिए पैगंबर हो के भी नेकी के काम में खुद पे भरोसा नहीं है। अल्लाह हर नेक काम भी तेरी तौफीक से सर अंजाम हो जाए तो हो जाए, तू का ना तौफीक दे तो नहीं कर सकते हम। इसलिए मांग रहे हैं कि अल्लाह तू मुझे कायम रखना नमाज के ऊपर, मैं नमाज कायम करने वाला रहूं, हमेशा मुझे नमाज यानी मैं नमाज खुशू के साथ पूरे उसके शराइत के साथ अदा करने वाला रहूं। मैं उनकी फिक्रें कैसी थी उनको नमाज की फिक्र थी, तो उनको ये नहीं फिक्र थी मेरे बच्चों का बड़ा घर तो बना नहीं, अब इनका यहाँ पे क्या बनेगा, किधर से खाएंगे, किधर से पिएंगे, क्या होगा उनका स्टेटस क्या होगा, वो उनको नमाज की फिक्र है। वो मेन जरूरियत थी अपनी नमाज, बच्चों की नमाज की, मेरी जरूरियत को भी कायम रखना नमाज से। और हम मांगते हैं अपने बच्चों के लिए इसी तरह नमाज की दुआ तड़प के, अल्लाह मेरे बच्चों को नमाज के लिए कायम रखना। या ये होता है कि सुबह को उठाने जाएं तो हाय बेचारे थक के सोए हैं, अभी क्या उठाऊं, चलो कोई बात नहीं सोने दो, बाद में कज़ा पढ़नी है, ऐसा तो नहीं होता। या बार बार उनको कहते हैं, उनकी नमाज की फिक्र करते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह नमाजी इनको बना, इनको नमाज पे कायम रख। और ये नहीं कि वो नहीं है कायम इस वजह से मांग रहे, चाहे कायम हो भी तब भी अल्लाह हमेशा कायम रहना। देखिए ये नियमतें ऐसा नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास नहीं है, है भी तो उनकी बरकरारी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बरकरार रहे, कायम रहे, हमेशा ऐसा ही रहे। क्योंकि कई नियमतें इंसान के पास होती है लेकिन छीन भी जाती है, आपको नहीं पता होता। जो अपने लिए मांग रहे हैं अपनी औलाद के लिए भी मांग रहे हैं, औलाद इंसान की कमाई है ना। रब्बाना वतकब्बल दुआ, ऐ हमारे रब तू कबूल कर ले मेरी दुआ। अब ये कहने की क्या जरूरत है, फिर इंसान दुआ मांगता है तो मतलब यही है ना कि अल्लाह तू कबूल कर लेना, क्यों कह रहे हैं फिर। इससे पता चलता है कितने डेस्परेट है, जैसे इंसान कहता है ना अल्लाह कबूल कर लेना ना, बस मेरी दुआ कबूल कर ले बस, ऐसे हम बोलते रब्बाना वतकब्बल दुआ, है हमारे रब तू कबूल कर ले मेरी दुआ। ये तो इतनी रटी हुई है कि शायद पता भी नहीं चलता कि हम क्या क्या रहे हैं नमाज में, तो हम ये दुआ करते हैं रब्बी जन्नी कहीं चलाती होती जल्दी जल्दी बस पढ़ के खत्म। रब्बाना गफिरली, है हमारे रब बख्श दे मुझको, बख्शे सबसे पहले अपनी। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि जब आप दुआ करते हैं ना तो उसमें तरतीब क्या होनी चाहिए। तो सर हमें तरतीब नहीं पता थी, तरतीब उलट कर देते हैं, जहाँ पे ये दुआ करनी है कि सबसे पहले अपने लिए दुआ करो, याद रखो सबसे पहले अपने लिए, फिर उसके बाद अपना इनर सर्कल यानी अपनी औलाद है, वालदैन है, ये है, उसके बाद आउटर सर्कल जैसे जैसे है, फ्रेंड्स हैं और हैं है, फिर बाकी सारे ही ईमान वालों के लिए। बाहर से अंदर की तरफ नहीं शुरू करना कि पहले फलां के लिए होनी, मैं तो इतनी अच्छी हूँ कि मैं अपने लिए एंड पे करूंगी, ऐसे नहीं है, सबसे पहले अपने लिए करनी है, ठीक है। तो रब बना सकती, हमारे रब बख्श दी मुझको, वली वाली दैया, और मेरे वालदेन को। अब वालदेन की उन्होंने दुआ क्यों की जबकि इनके वाले तो बुत परस्त थे। नंबर वन रीजन इसका क्या है कि इन्होंने अपने वालिद से वादा किया था निकलते वक्त कि मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा, इसलिए दुआ की। नंबर टू रीजन क्या था, इसलिए कि अभी तक अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के लिए दुआ करने से मना नहीं किया था कि कोई मर भी जाए शिर्क के ऊपर तो उसके ऊपर अब आप दुआ नहीं कर सकते, ये पहले मना नहीं था, ठीक है। जब पता चल गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरा बाप शिर्क के ऊपर ही था और उसी के ऊपर कायम रहा, उसी के ऊपर चला गया, तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से मना हो गया था कि अब आप मुशरिक के लिए इस तरह से दुआ नहीं कर सकते। हाँ मुशरिक जब तक जिंदा है आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे, लेकिन अगर वो शिर्क के ऊपर मर गया, अब वो पता चल गया कि शिर्क पे मर गया, तब अलाउड नहीं है दुआ करना कि अल्लाह उसको माफ कर देना, क्योंकि शिर्क नाकाबिले माफी है। जब अल्लाह ने एक दफा कह दिया ना मैंने शिर्क को नहीं माफ करना, बस खत्म हो गई, अब आपका ये दुआ करना भी एक बेअदबी, नहीं नहीं बस अब तू माफ कर। नूह अलैहिस्सलाम अपनी इतनी सी दुआ के ऊपर क्यामत के दिन देखें कितने खौफजदा होंगे कि मैंने अल्लाह से गलत दुआ कर ली थी, आज मैं नहीं बोल सकता, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर ली थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। दुआओं को भी सोच समझ के करें। कोई शेर पे मर जाए तो आप नहीं कह सकते कि अल्लाह अभी इसको माफ कर दे। आप अपने तो अब आपका अगर क्वेश्चन ही आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर क्यों की, तो ये मैंने आपकी दो वजूहात आपको बता दी। तो वली वाली दहिया वलिल मोमिनीना, और अल्लाह तमाम मोमिनों के लिए कि या अल्लाह जितने ईमान वाले हैं उनको भी बख्श देना। अब यौम यकीन, जिस दिन कायम हो जाएगा, जिस दिन हिसाब किताब होना है, जिस दिन तेरे पास आना है अल्लाह, उस दिन सबको बख्श देना। इसका मतलब है कि एक इंसान को किस किस के लिए दुआ करनी चाहिए वो यहाँ पे बता दिया गया। ये इंसान इन सब के लिए दुआ करे, और ये इतनी प्यारी दुआ है, किसी के माँ बाप जिंदा हो या फौत हो गए, अगर माँ बाप ने बच्चों को देखे नमाजी बना दिया तो आप बच्चे जब तक नमाज पढ़ते रहेंगे। हमने तो एक ही रटाई होती है ना दुआएं, कम अज कम आपको ये दुआ मिलती रही। और नमाज समझ ले तौहीद जो है, तौहीद की एक 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 प्रैक्टिकली आप उसको दिखा रहे हैं, क्योंकि नमाज क्या है, सबसे रुख फेर के रब का रुख कर लेना, अपनी दुनिया से सब चीजों से अपने सब कामों से रुख हटा के एक अल्लाह की तरफ रुख कर लेना। तो ये इतनी खूबसूरत एक समझने चीज है कि जैसे एक जर्रा जो है, एक जर्रा जहानों के बादशाह के आगे खड़ा हो गया, और यही प्रैक्टिकली कयामत के दिन होगा कि इंसान खड़ा होगा अल्लाह के आगे हिसाब किताब के लिए। आज नमाज में जैसे खड़ा होता है ना, वैसे ही उस दिन खड़ा हो जाएगा। और नमाज एक समझ में ऐसे भी है जैसे इंसान अल्लाह ताला के सामने एक अहद कर रहा है कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, तू सबसे बड़ा सबसे आला, सारी तारीफ तेरे लिए, और मैं तेरा गुलाम, मैं एक जर्रा, मैं तेरे आगे इस तरह बिछ जाने वाला कि मैं अपनी नाक भी रगड़ता हूँ जमीन के ऊपर और अपना माथा जमीन पे रखता हूँ तेरे आगे। नमाज में फरमा बरदारी से खड़े होना ये इंसान दिखाता है कि मैं अल्लाह जिंदगी में भी तेरी फरमा बरदारी करूंगा। और क्यामत के दिन आपको पता है ना, सबसे पहला हिसाब ही नमाज का होगा। जिसकी नमाज सही निकली तो उसके बाकी क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसकी नमाज ही नहीं सही निकली तो फिर पहला क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसी में आग पे डाल दिया जाएगा, फिर बाकी हिसाब तो बाद की बात है। अब यहाँ तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो पूरी हुई। अब आपको मैंने बताया था ये सूरत कब नाजिल हुई है, मक्की दौर में लास्ट पीरियड, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात है इस वक्त, काफिर जो है मुसलमानों पे बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं और फलते फूलते जा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस वक्त, पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की देखिए बात बता दी ना, और अहले मक्का को भी ये बता दिया कि अहले मक्का जिस इब्राहिम का तुम नाम लेके कहते हो ना कि हम दीने इब्राहिमी पे है, वो इब्राहिम देखो कैसे थे, उनके दुआ की वजह से आज ये तुम्हें अमन वाली जगह मिली, उनकी दुआ की वजह से यहाँ पे फल और ये सब प्रोड्यूस यहाँ पे आता है, खाने पीने की तुम्हें फरावानी मिली हुई, उनकी दुआ की वजह से तुम यहाँ पे बसे हुए, और तुम आज ये कर रहे हो तो उनके तरीकों से बिल्कुल उलट। उन्होंने तो कह दिया था जो मेरे तरीके से उलट है अल्लाह फिर बस तू ही गफूर रहीम, मैं तेरे यानी हवाले करती, जो मेरे तरीके पे चलेगा सिर्फ वो मेरा, और तुम कहते हो हम इब्राहिम के तरीके पे। इनको एक समझने जगाया गया मुशरिकी ने मक्का को, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे थे और तुम खुद देखो अपने आप को तुम क्या कर रहे हो, वो कैसे शुक्र गुजार थे, उन्होंने किस लिए अपनी औलाद को यहाँ पे लाके बसाया। हर माँ बाप जो अपनी औलाद से मोहब्बत करता है उनको इन्हीं चीजों की फिक्र होनी चाहिए जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र थी, कि उनको नमाज की अपनी औलाद की फिक्र, और उनको ये इसकी खातिर वो अपने औलाद को लेकर यहाँ पे किसी जगह पे मूव हो रहे हैं, इस जगह पे जा रहे हैं, किसी जगह पे छोड़ रहे हैं। और ये थी फिक्र कि मेरी औलाद शुक्र गुजार बने, इसकी खातिर अल्लाह शुक्र गुजारी की खातिर उनको अता करना नहीं। अब कहा गया वला तहसबन अल्लाह गाफिलन अम्मा यामल अज़्ज़ालिमीन, ये ना समझना कि अल्लाह गाफिल है उस चीज से जो तुम अमल करते हो। तुम ये सोचते हो कि तुम मुसलमानों के ऊपर टॉर्चर करोगे, तुम ईमान लाने वालों को डराओ धमकाओगे, और अल्लाह को पता ही नहीं है। अल्लाह ताला एक एक घड़ी के आमाल से बाखबर है, लेकिन इन्नमा युअख्खिरुहुम, लेकिन वो ढील दे रहा है, ढील दे रहा है, मोहलत दे रहा है। असल में पता तो उसको सब है, देख रहा है, वो सब जानता है। और ये आयत, इस आयत में दोनों चीजें, तसल्ली भी है और डरावा भी है, दो हालांकि बिल्कुल ऑपोजिट चीजें। तसल्ली कैसे, ईमान वालों के लिए तसल्ली है कि तुम ना ये समझना कि अल्लाह को पता नहीं पता चल रहा है कि नहीं, हम देखो किस चीज से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या हालात है, हमारे साथ क्या हो रहा है, अल्लाह को पता नहीं है क्या। लोग अक्सर आज के वक्त में कहते हैं ना, हम कभी देखते हैं, अल्लाह ताला माफ करे, कभी फलस्तीन और इस तरह के हालात देखते हैं, वहां पे कोई औरत खड़ी हुई और कह रही है अल्लाह तू देख नहीं रहा, हमारे ऊपर ये हो रहा है, चीख रही है और ऐसे कर रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे गाफिल ना समझो कि मुझे पता ही नहीं है, मैं भूल गया हूँ, या नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह निस्यान से पाक, अल्लाह हर चीज को देखने वाला। फिर हम कहते हैं फिर क्यों नहीं पकड़ता इनको, इतना जुल्म हो रहा है क्यों नहीं पकड़ता, फलाना जुल्म कर रहा है। कई मुसलमान भी ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं, हाँ तो फिर अगर खुदा है तो वो फिर क्यों उसने फलाना इतना जुल्म करता है, वो मुसलमान इतने पिस रहे हैं, फलाने के साथ ये क्यों हो रहा है, फिर उसके साथ ये क्यों हो रहा है, फिर लोग मर क्यों रहे हैं भूखे। या अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह को पता है, वो सब जानता है, सबकी हरकतों को देख रहा है, लेकिन उसने ढील दे रखी है। उसका ये तरीका नहीं है कि इधर कोई क्राइम करे उधर उसको पकड़ ले। यहाँ पे ढील कब तक दीजिए, उस दिन तक के लिए जब आंखें पथरा जाएंगी, आंखें जो है ऐसे निगाहें जो है वो फटी की फटी रह जाएगी। और वो कौन सा दिन है, वो कयामत का दिन है। ये इसको अपने लिए, ये ढील को अच्छा ना समझें कि हमें बड़े मौका मिला हुआ और कोई नहीं हमें पकड़ने वाला, ये ना समझें। अल्लाह की पकड़ जब आती है ना तो वो बड़ी मुश्किल है, फिर कोई अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। और कयामत आने वाली है जो बहुत सख्त दिन है, जिस दिन निगाहें पथरा जाएंगी। और पथराती कब है निगाहें, इंसान की आंखें खुली की खुली कब रह जाती, जब कोई हैबतनाक जो कोई खौफनाक मंजर सामने आ जाए, फिर कहते हैं ना कि इसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई, आंखें खुली, यानी आंख छपकना ही इंसान को भूल जाए, इतने खौफनाक मनाजिर होंगे। और क्या होगा इंसानों का हाल, मुहतियीना तेजी से दौड़ रहे होंगे, मुकनियीन ऊपर को सर उठाए हुए होंगे। सर ऊपर को उठाना कैसे, मुकनियीन की अगर आप प्रैक्टिकल फॉर्म देखना चाहें तो आपने कभी देखा जब घोड़ों को दौड़ाया जाता है तो उसका जो ऊपर सवार होता है उसकी बागें खींचता है ना, तो घोड़ा कैसे उसका सर ऊपर हो जाता है, देर में तस्वीर ना, तो सर घोड़े का कैसे पीछे को चला जाता है ना, ऐसे ऊपर को उठ जाता है और पीछे को चला जाता है। ये है मुकनेई की सूरत। तो वो मुकनेईन होंगे उस दिन, यानी ऊपर को सर उठाने वाले होंगे। ला यरतद्दु इलैहिम तर्फुहुम, नहीं लौटेगी उनकी निगाह उनकी तरफ, यानी जब कब्रों से उठेंगे उस वक्त का ये मंजर है कि उस वक्त क्या हाल होगा लोगों का, कि ऐसे आंखें पथरा जाएंगी। क्योंकि देखिए ये मंजर अब जब सामने आना है तो इंसान के लिए इतने खौफ का हालत होगी, इस कदर दहशतनाक मनाजिर होंगे कि वो तो पलक झपकना ही भूल जाएगा कि ये हो क्या गया। एक बंदे को तो यकीन ही नहीं है कि नहीं, 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 आनी कहां, जब आएगी देखी जाएगी ना, उसके लिए कुछ किया जिसको यकीन था वो भी नहीं कुछ करता था, देखा जाएगा अभी कौन सा कल आ रही है जो इतनी फिक्र की जरूरत है। ऐसे करते करते जिंदगी गुजर गई। अब कब्रों से उठे या हो सकता है यकीन ही ना हो किस दिन के आने का। तो अब जब वो मनाजिर सामने आ रहा है तो खौफ का आलम क्या होगा कि ये तो वही चीजें सामने आ गई जिसकी हमें बातें की जाती। किसको नहीं पता डे ऑफ जजमेंट का, इवन जो लोग बिलीव नहीं करते उनको भी पता है कि डे ऑफ जजमेंट है। एक है दिन जिसकी बातें होती है, दे डोंट बिलीव इट। अब क्या है, अब जब सामने आ रहा है कि हैं कि क्या हो गया हमारे साथ, अब दौड़ना शुरू करेंगे। यदि एक एक आवाज की तरफ दौड़ेंगे तो किस तरफ दौड़ेंगे, जिस तरफ को एक तरफ उनको हांका जा रहा होगा उस तरफ दौड़े होंगे, और उनकी कैफियत उस वक्त क्या होगी, ये यहाँ पे अल्लाह ताला ने सारी पिक्चर दिखा दी कि उस वक्त उनका आलम क्या होगा, क्या गुजर रही होगी उनपे। अब जैसे कोई खुदा ना खास्ता एकदम जलजला आ जाए तो लोगों का हाल देखा क्या होता है, वो जिधर मुंह होता है उस तरफ को दौड़ना शुरू करते हैं। कोई पता ही नहीं है दुपट्टा लिया कि नहीं लिया, बच्चा किधर है किधर नहीं है, कोई चप्पल पहनी कि नहीं पहनी, बस एकदम उठ के दौड़ने लगते। तो ये तो दुनिया के छोटे छोटे जलजले एक सेकंड के लिए ऐसे बस हिलाते हैं अल्लाह ताला, तब हमारा ये हाल हो जाता है। कयामत का मंजर सोचे बस, क्या हाल के इंसानों का हाल ये होगा कि बेकाबू होके दौड़ रहे होंगे और ऐसे दौड़ोगे सर नीचे करने की भी फुर्सत नहीं होगी। जो एक मंजर देखेंगे उसी की तरफ टिकटिकी बन जाएगी, जिसने जो सीन देखा ना उस तरफ ही उसकी आंखें जम जाएगी और फिर नजर हटेगी नहीं वहां से। ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, उनकी निगाह लौटेगी नहीं कि अपने आप को ही देख लेंगे मेरा क्या हाल हो रहा है, आंख झपकना भी भूल जाएंगे। वह अफ़ीदतुहुम हवा, और खौफ के मारे ये हाल होगा कि दिल हवा हो रहे होंगे। इससे दिल की स्पीड का भी पता चलता है कि दिल हवा होने का मतलब क्या, जब हवा तेज चलती है ना तो दिल की स्पीड क्या होगी, धक 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 के इंसान को ऐसे महसूस होता है ना दिल ऊपर को आया, जैसे हलक के अंदर हार्ट बीट है। कभी अगर आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा याद करेंगे जब आप इंतहाई खौफ ज्यादा हो गए, उस वक्त दिल कहाँ महसूस होता है, जैसे ये हलक में बज रहा है। यानी इस वक्त सोचने समझने की तो कोई सलाहियत ही नहीं रहेगी, बस जिधर को है उधर को दौड़ रहे और सार ऊपर को, और इमेजिन करें आंखें ऐसी फटी जा रही और तेज दौड़ रहे। अल्लाह अकबर, पुकारने वाले की आवाज है, उस तरफ भागे जा रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं देख रहे और पूरे डिसिप्लिन के साथ भाग रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, कोई ये नहीं कह रहा मैंने नहीं जाना, और वो खेल खेल के ला रहे हैं। इतने ओबीडियंट हो गए कैसे भागे जा रहे और आंखें भी नीचे नहीं झुकाते, हालांकि घबराहट और फिक्र के मारे पलक झपकना भूल गए और दिल ऐसे हैं जैसे खाली बिल्कुल, खौफ के सिवा अंदर कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये वो दिन आसान करते ना हम सबके लिए।